ಸುಧಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ಥಕಾನ್ ಥಕಾನ್ಸಿ ಲಗ್ ರೀ ಸಬ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರಾಧೇ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ 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 ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಕೀ ನಂದಗಾಂವ್ ಧಾಮ ಕೀ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ನಂದಗಾಂವ್ ಧಾಮ ಕೀ ಹಮ್ ಸಬ್ ಲೋಗೋ ಕಾ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೈ ಕಿ ಹಮ್ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ನಂದಗಾಂವ್ ಧಾಮ್ ಮೇ ಆಯೇ ಹೈ ನಂದಗಾಂವ್ ಧಾಮ್ ಬಹುತ್ ವಿಶೇಷ ಧಾಮ್ ಹೈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಲಿಖಾ ಹೈ ಕಿ ಥೋಡಾ ಸಾ ಆವಾಜ್ ಕಮ್ ಕರೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಐಸಾ ಲಿಖಾ ಹೈ ಕಿ ಜಿತ್ನಾ ಭಾಗ್ಯ ಗೋವರ್ಧನ್ ಕೋ ನಹೀ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾ ಉತ್ನಾ ನಂದೀಶ್ವರ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಕಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಪೆ ಭಗವಾನ್ ಲೀಲಾ ಜರೂರ್ ಕಿಯಾ ಬಹುತ್ ಲೀಲಾ ಕಿಯಾ ಲೇಕಿನ್ ಚೌಬೀಸ್ ಘಂಟೆ ದಿನ ರಾತ್ अपने पद रज का लाभ नंदीश्वर को दिया, तो नंदीश्वर को गोवर्धन से भी भाग्यवान माना गया। जैसे मैंने आपको बताया कि शिवजी महाराज यहाँ पर पर्वत बने हुए हैं, कृष्ण और उनके सखा माता पिता सबके चरणों की धूल अपना ले रहे हैं। इतिहास ऐसा कहता है कि देव मीड राजा थे, जिनकी वैश्य पत्नी जो थी गोपी पत्नी, उनके द्वारा उनको चार पुत्र हुए, तीन पुत्र हुए, परजन्य उर्जन्य और राजन्य। और जो सतराणी पत्नी थी उनकी, उनके द्वारा उनको शूरसेन प्राप्त हुए पुत्र के रूप में, और शूरसेन ने वसुदेव को और बाकी जन्म दिया। और भाग्य की बात यह है कि शूरसेन के वंश में भी कृष्ण ने जन्म लिया और परजन्य के वंश में भी श्री कृष्ण ने जन्म लिया। दोनों वंश को भगवान ने अपने अलग अलग रूपों से आशीर्वाद दिया। यहाँ पर एक प्रेम तड़ाग तीर्थ है, प्रेम तड़ाग तीर्थ, जिसमें बैठकर नंद बाबा ने तपस्या की थी, नहीं परजन्य बाबा ने तपस्या की थी। वो परजन्य बाबा को भगवान ने दर्शन दिया था और कहा था कि आपके पांच पुत्र होंगे और बीच वाले पुत्र के रूप में मैं अवतरित हो जाऊंगा। तो पर वो द्रोण और धरा नाम के दो भक्त थे, धरा नाम की पत्नी, द्रोण नाम के पति, उन्होंने 12,000 वर्ष तक तपस्या की और उसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र बने। वहां पर भी वसुदेव और देवकी ने भी अपने पूर्व जन्म में ऐसी तपस्या की थी, तो दोनों के पुत्र के रूप में भगवान प्राप्त हुए। लेकिन फर्क इतना ही है कि देवकी वसुदेव को ये पता था कि भगवान भगवान है उनके पुत्र, और नंद बाबा यशोदा को इसका ज्ञान नहीं था। क्योंकि जो ब्रज में जन्म लेते हैं उनका ये ज्ञान कि ये मेरे भगवान हैं, ये ज्ञान भगवान पहले छीन लेते हैं उनसे और फिर उनको ब्रज में जन्म देते हैं, क्योंकि ब्रज में वो निष्प्रभ आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, उसमें अपना भगवान का पद जो है वो छोड़ देते हैं उसको। तब जाके उनको क्या है, निरागस निष्पाप जो पवित्रोत्तम आनंद है उसका अनुभव प्राप्त होता है। तो परजन्य महाराज को भगवान ने दर्शन दिया तो उसको पांच पुत्र हुए, उपनंद बाबा, अभिनंद, नंद महाराज और सुनंद और नंदन चाचा, ऐसे पांच। तो दो बहनें हुई, सानंदा और सानंदा और नंदिनी, ऐसे सात लोगों का परिवार। और हर एक, ये ऐसे इतिहास में लिखा है कि इनका इतना स्नेह था कि वो सब लोग एक ही गांव में रहे, इतने प्रेम था उनका। और एक प्रेम का लक्षण ऐसा है कि जब परजन्य महाराज यहाँ पर बस रहे थे तो भगवान ने दर्शन दिया और उसके बाद में यहाँ पर केशी राक्षस आया और उसके आतंक की वजह से परजन्य बाबा यहाँ से छोड़ के गोकुल में चले गए और वहाँ पर अपना राज्य बसाया। वहाँ पर उनको पांच पुत्रों की प्राप्ति हुई और वहाँ पर नंद महाराज का जन्म हुआ, सबका जन्म हुआ। और एक समय ऐसा आया कि परजन्य बाबा ने सोचा कि राजा थे वो, बहुत सर्वगुण संपन्न थे, सबके लिए प्रिय थे, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, संत थे। तो उन्होंने सोचा अभी समय आ गया है, पांचों पुत्र अभी जवान हो गए, अपना राज्य संभालेंगे। तो उन्होंने उपनंद ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक किया, राजमुकुट पहनाया, राजतिलक लगाया, राजदंड दिया उनको। और ये सब समारोह होने के बाद में जब उपनंद बाबा राजा बने तो उन्होंने क्या किया, उस सभा में नंद जो उनके छोटे भाई थे उन पर अपनी नजरें टिकाई, बड़े प्रेम से उनको निहारना शुरू किया, बहुत देर तक सभा में उनको निहारते रहे। तो फिर उनके आंखों से अश्रु आए और सीधे उतर गए वो राज सिंहासन से और नंद को उन्होंने बड़े प्रेम से गले लगाया और सबके सामने समक्ष ये घोषणा कर दी कि मेरा राज तिलक राज मुकुट जो है मेरे इस भाई को मैं दे रहा हूं क्योंकि हम सब में ये सर्वश्रेष्ठ है। और एकदम जाहिर सब लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया कि किसी को अगर आपत्ति है तो बता दो, अगर सम्मति है तो बता दो। तो सब लोगों ने जयघोष किया और सम्मति दी और राधे राधे।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे हरे
हरे राम
हरे राम
हरे राम
हरे राम
राम राम
राम राम
हरे हरे
हरे हरे। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो आलिंगन दिया बड़े प्रेम से, असुरों से सिंचित किया और सब लोगों ने जय घोष करके उपनंद बाबा का ये निर्णय जो था वो स्वीकार किया। और उपनंद बाबा ने एक ही शर्त पर इसको स्वीकार किया कि मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, फिर भी आप मुझे राज्य दे रहे हैं, एक ही शर्त पर मैं ये स्वीकार करूंगा, अगर आप मेरे सलाहकार बनेंगे तो आपकी सलाह से मैं राज्य चलाऊंगा। तो इसका प्रमाण ये है कि जब वहां से निकलने का समय आया तो उपनंद बाबा ने सलाह दिया था कि अभी यहाँ पर गोकुल अभी सुरक्षित नहीं रहा, अभी राक्षसों का आतंक हो रहा है, कृष्ण के पीछे राक्षस लगे कंस के, अभी हमको यहाँ से जाना चाहिए। तो उपनंद महाराज के सलाह पर ही वो राज्य वहां से स्थापित करके ये नंदगांव में आके बस गए। पहले नंदगांव के थे, फिर गोकुल में गए, फिर वापस नंदगांव में आए। और नंद महाराज जो है वो यहाँ से, मतलब जन्म उनका वहां हुआ, लेकिन वहां लौट के आ रहे थे तो पहले छठेकरा में रुके, फिर छठेकरा से काम्यवन में रुके, फिर काम्यवन से नंदगांव में आके रुके, ऐसा इतिहास है इसका। तो नंदगांव में दो प्रमुख रस हैं, एक वात्सल्य रस, नंद बाबा यशोदा और प्रभावती और बड़े बड़े गोपों की जो पत्नियां हैं उनका भगवान के साथ जो रिश्ता है, वात्सल्य रस। और दूसरा प्रधान रस है वो साख्य रस, ग्वाल बालों के साथ में गौचारण, हाँ, छीना झपटी, माथन चोरी, इस प्रकार की लीलाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो ये स्थान जो हम यहाँ बैठे हुए हैं ये नंदगांव का बहुत बड़ा विशेष स्थान है कि सब ब्रजवासी लोग यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, आशा लगा के नहीं बोल रहा मैं, रुको जरा, आशा बाद में लगाओ, ये यहाँ पर पिकनिक बनाते हैं दाल बाटी चूरमा की, ये उनका विशेष स्थान है यहाँ पर, हाँ चूरमा
दाल बाटी चूरमा खवावे सो चूरमा।
राधे राधे, जय श्री राधे। ये मैं कथा भूल जाता हूँ बीच में, ऐसा कुछ करते हो ना आप लोग तो मैं भूल जाता हूँ।
अब भूमि का असर है, बोलो शंकर भगवान की जय। इस स्थान का नाम,
भैया रुको रुको, अरे रुको भैया रुको, बैठो तुम तो बैठो,
उनका कथा होने दीजिए फिर आप खंड बताओ उससे पहले।
तो ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए, बहुत इसमें से उपदेश प्राप्त होते हैं। आप सब जानते हैं कि जब भगवान पृथ्वी पर जब ये अवतार लेते हैं पहले गौलोक धाम को प्रस्थापित करते हैं और फिर जमुना जी गोवर्धन साथ में आते हैं, उसके बाद में भगवान के भक्त आते हैं, पहले अवतार लेते हैं और फिर वो भगवान उसमें बाद में अवतार लेते हैं। तो एक विशेष समझने वाली बात ऐसी है कि श्रावण शुद्ध अष्टमी है ना, कि वद्य अष्टमी, कृष्ण का जन्म जब हुआ भादो, भादो शुद्ध अष्टमी है ना, तो वो जब वहां पर देवकी के गर्भ में से प्रकट हुए तो रोहिणी नक्षत्र का द्वितीय चरण चल रहा था और रोहिणी के तृतीय चरण में यशोदा जी ने यहाँ पर कृष्ण को जन्म दिया। तो यशोदा जी के कृष्ण जो है वो ओरिजिनल कृष्ण है गौलोक धाम के, और देवकी जो की जो कृष्ण है वो वैकुंठ के कृष्ण है, ऐश्वर्य वाले। और रहस्य की बात यह है कि देवकी के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया और यहां पर मूल कृष्ण भगवान ने यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। उसकी कहानी ऐसी है कि नंद बाबा को बड़े उम्र तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, तो नंद बाबा सब जगह व्रत रख लिया लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन सवेरे जा रहे थे स्नान करने के लिए जमुना जी के पास, तो सभी संत लोग उस समय अपने अपने घर के बाहर प्रभाती कर रहे थे, प्रभाती का मतलब वो ना दातून करना जो भी कुछ को प्रभाती कहते हैं, प्रातर विधि कह सकते हैं उसको। तो एक साथ सब लोगों ने उनको कहा कि पुत्रवान भव, तो नंद बाबा हंस पड़े, उनका भी की कोई उम्र है अभी ये पुत्रवान बनने की। तो साधुओं को भी अचानक आश्चर्य हुआ कि हमने कैसे बोल दिया, तो वो सब लोग भाग के शांडिल्य ऋषि के पास गए, तो सबके गुरु हैं वो, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हमने आशीर्वाद दिया, हमने तो ऐसे ही दिल से बोल दिया, हमको तो कोई प्लान नहीं था बोलने का, लेकिन जैसे ही नंद बाबा दिखे थे हमारे हृदय से ऐसा आशीर्वाद प्रकट हो गया। अभी ये सच नहीं हुआ तो लोगों की श्रद्धा उड़ जाएगी ब्राह्मणों के ऊपर से। तो चांडिली मुनि ने कहा कि आप 18,000 कोटि गोपाल मंत्र का यज्ञ करना, गोपाल मंत्र यज्ञ करना। अब जो आहुतियां पूर्ण हो जाएगी तो फिर यशोदा माई गर्भवती हो जाएगी। तो उन्होंने सबने मिलकर यहाँ पर नंदगांव में वो गोपाल यज्ञ किया, और गोपाल यज्ञ जब भी आखिरी आहुति अर्पण की गई तो समय वो यज्ञ कुंड से नील तेज प्रकट हो गया और आकाश में जाके वो व्यक्ति रूप बन गया, बाल रूप। और वो बाल रूप कौन है वहां पर आकाश में जाकर वो बाल रूप जो तेज निर्माण हो गया तो नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया उसने। नंद बाबा बहुत तेज वाले बन गए, तेजस्वी, और उसके पश्चात वो तेज नंद बाबा के हृदय से यशोदा माई के हृदय में स्थापित हो गया, वहां से गर्भ में स्थित हो गया और यशोदा देवी गर्भवती हो गई। इसके दो प्रमाण है, एक मार्गशीर्ष महीने के प्रथम तिथि में वो गर्भवती हुई और एक प्रमाण है कार्तिक पूर्णिमा के मतलब कल के दिन, टुमोरो, कल के दिन में उनके वो गर्भवती हुई। और एक प्रमाण से कहते हैं कि वो 8 महीने गर्भ में रहे और एक प्रमाण से जानते हैं कि वो 9 महीने गर्भ में रहे। ये सब कल्प भेद की बात है, अलग अलग कल्प में अलग अलग रीति में भगवान लीला करते हैं। तो जब वहां पर भगवान ने जन्म लिया तो प्रकृति में बहुत सुंदर परिवर्तन हुए। रात में कमल खिले जो तो अभी खिलते नहीं है, रात में पक्षियों ने गुंजारव किया, रात में आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, बहुत सारे 6 ऋतु एक साथ प्रकट हो गए, यमुना जी आनंद से उछल गई, ऐसे प्रकृति में बहुत सुंदर पवित्र परिवर्तन हुए। यहाँ तक कि जो साधु मुनि कंस के भय से यज्ञ आदि मंत्र उच्चारण करना भूल गए थे वो सब लोग अचानक बीच रात में स्वयं स्फूर्त निर्भय होकर श्लोकों का उच्चारण करने लगे, जो भय से चुपचाप बैठे हुए थे इतने दिन तक। तो ये प्रमाण है उसका, जब कृष्ण जन्म लेते हैं, कृष्ण अवतरित होते हैं, कृष्ण प्रकट हो जाते हैं या कृष्ण भावना प्रकट होती है तो भी सब लोग निर्भय हो जाते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर वसुदेव जी वहां निकले, वहां से यमुना जी पार करते हुए, आप जब जानते हैं यमुना जी ने रास्ता दिया और फिर वसुदेव जी उनको लेकर नंद भवन आए गोकुल में। उस समय यशोदा देवी ने 3रे चरण में रोहिणी नक्षत्र के प्रसूत होकर 2 बालकों को जन्म दिया, एक कृष्ण और एक योगमाया। क्योंकि योगमाया को भगवान ने वरदान दिया था, जब भी गौलोक में गए थे सब लोग भगवान से प्रार्थना करने के लिए, पृथ्वी ब्रह्मा सभी लोग, तो भगवान ने कहा था कि हम आएंगे और कहा था कि 7वें गर्भ के रूप में जब अनंत शेष अवतार आएंगे तो योगमाया को आदेश दिया था कि उनको आप देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर देना। तो 7वां गर्भ यहाँ लगा कि गर्भपात हो गया, लेकिन वहां से वो माया देवी ने उसको संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन कर दिया। तब रोहिणी के गर्भ में मूल बलराम जी विराजमान थे और ये अनंत शेष थे, अनंत शेष आकर इस बलराम जी विलीन हो गए। और फिर जब ये कार्य किया तो भगवान ने वरदान दिया था, जब तुम ये कार्य करोगी योग माया तो तुम मेरी बहन के रूप में जन्म लोगी, मेरे साथ ही एक ही गर्भ में। तो उस गर्भ में जब वो गर्भवती हुई तो एक कन्या और एक पुत्र दोनों विराजमान हो गए। और जब वसुदेव लेकर आए तो वसुदेव जिस बालक को लेकर आए वो बालक इस कृष्ण में विलीन हो गए, मतलब 2 कृष्ण के 1 कृष्ण हो गए और कन्या को लेकर वो चले गए। ये गर्ग संहिता के अनुसार इतिहास है। और यहाँ पर फिर जब भी जन्म हुआ भगवान का, यहाँ पर नहीं गोकुल में, कल्प वेद के अनुसार यहाँ पर भी जन्म होता है, ऐसा नहीं है। अभी इस कल्प में रावल में राधा रानी का जन्म हुआ, किसी कल्प में बरसाने में राजमहल में भी जन्म हुआ है, किसी जन्म में पर्वत में एक पेड़ है उसके तले भी जन्म हो गया है। ऐसे अलग अलग कल्प के हिसाब से भगवान अलग अलग लीला करते हैं, क्योंकि उनके लीला में नव नवाए मानता है, हमेशा वो क्या कहते हैं उसको, फ्रेश रहते हैं, अलग अलग तरीके से विविधता से वैविध्य पूर्णता से वो अवतार लेते हैं, लीला करते रहते हैं। तो यहाँ जब जन्म हुआ गोकुल में तो कहते हैं कि 6 महीने तक नंद बाबा ने और सबने मिलकर उनका जन्मोत्सव मनाया, इतना घी मक्खन फेंका, इतना मक्खन के गोले फेंके कि नंद भवन की मूरियां क्या कहते हैं उसको ब्लॉक हो गई, मतलब उसमें से सब जाना था रास्ता वह सब बंद हो गया, ऊपर से मक्खन दूध दही फेंका तो पूरा दही का सागर पैदा हो गया। नंद बाबा के पेट में फेटा बांधकर उनको नचाया उन्होंने ऐसे मंथन की तरह, तो आचार्य बताते हैं कि एक तरह से एक क्षीर सागर पैदा हो गया और नंद बाबा को मंदार पर्वत बनाकर उसका मंथन भी किया गया, और वो समुद्र मंथन में तो उसके बाद में अमृत पैदा हुआ था। ये समुद्र मंथन जो क्षीर सागर का वो उसके पहले ही रत्न पैदा हो गया था श्री कृष्ण नाम का, ऐसे आचार्य वर्णन करते हैं बहुत काव्यात्मक दृष्टि से। इस तरह से जब जन्म हुआ उनका तो सभी सखियां भागवा के आई, तो यशोदा माई ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगी, सबकी नजर लग जाएगी लाला को मेरे। लेकिन सभी लोग इतने उत्सुक थे, सज सज कर फूल वूल लगा कर आए थे, उनके हाथ में सुपड़ा था, सुपड़े में बहुत सारे सामान थे, लौंग रोन क्या कहते हैं लाई लौन सब कुछ था उसके अंदर। तो कहे नहीं नहीं लाला के दर्शन नहीं दूंगी आपको। तो कहते हम नजर लगाने के लिए नहीं आए, नजर उतारने के लिए आए। सब दिखाया उनको खोल के कि हमारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं, हम केवल आशीर्वाद देने आए लाला को। लेकिन ये यशोदा देवी मानने को तैयार नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अपने पैर निकाल दिए अपने कपड़े से बाहर, तो सबने पैरों का दर्शन किया है। जब तक दर्शन कर रहे थे भगवान ने मुख भी निकाल दिया और मुख का भी दर्शन कर दिया। तो फिर सब लोगों ने उनकी नजर उतारी है और गीत गाए हैं, बधाई दी है, और कहते हैं कि सभी देवता लोग इंद्र आदि सभी देवता लोग भेष बदल कर ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर वो सभा में भीड़ में सब लोग जमा हुए। और यशोदा देवी सोचती रही ये कौन है, हमारे राज्य तो नहीं है, ये तो बाहर से आए हुए हैं, लेकिन पूछेंगे कैसे कि आप कौन है, इतने समारोह में भीड़ में किसको पूछेंगे। तो इस तरह से कि समारोह हुआ, 6 महीने तक चला, और 6 महीने के बाद किसी को पता नहीं चला कि दिन रात हो रहा है क्या। इतने मग्न थे आनंद में, नंद बाबा ने 7 पर्वत बनाए धान के, वो पर्वत के चोटी पर रत्न रखे, और वो 7ों पर्वत अन्न धान्य जो है वो सब ब्राह्मणों को बांट दिए। 2 लाख गाय दान कर दी, कई लाखे गाय दान कर दी, 2 लाख तो वसुदेव ने मन में जेल के अंदर दान कर दी जन्म के होने के पश्चात। यहाँ पर नंद बाबा ने तो इतना लुटाया, घोड़े हाथी सब लुटाया। तो ऐसा वर्णन आता है कि जो शिवजी महाराज आए थे नंदी में बैठकर, तो वो नंदी का पूछ पकड़ के खड़े हो गए ऐसे, क्यों, क्योंकि बैल बट रहा है, हमारा भी बट जाएगा तो कैसे चलेगा। तो पूछ पकड़ के खड़े हैं, और भवानी देवी पार्वती देवी अपने गणेश जी को गोद में करके खड़ी है, क्योंकि हाथी का दान हो रहा है, हमारा हाथी भी चला जाएगा उसके अंदर, ऐसे वर्णन आता है। तो बहुत सुंदर नंदोत्सव का वर्णन है। और फिर 6 महीने के बाद जब होश आया तो उनको लगा कि अरे कम से कम सूरज को आज के दिन ब्रह्मा जी को समझ में आना चाहिए कि इतना बड़ा उत्सव हो रहा है तो कम से कम आज सूरज को लेट ढलना चाहिए ना। ऐसा कब ध्यान में आ रहा है उनको, 6 महीने के बाद, उनको पता ही नहीं, उनको लग रहा है एक ही दिन चल रहा है। उन्होंने ब्रह्मा जी को बहुत गारी दिया है समय कि क्यों इतना जल्दी दिन ढला रहे हो, कम से कम आज का दिन लंबा होना चाहिए था। और भगवान का षष्ठी पूजन भूल गए इस उत्सव में। तो जब 1 साल का जन्मदिन मनाने का समय आया तो यशोदा देवी ने बहुत ही भाग भाग कर जल्दी जल्दी में जाकर छठे ग्राम में षष्ठी पूजन किया उनका, ताकि वो सालगिरह मनाने के लिए, ना ऐसा होता है ना, सालगिरह मनाने के लिए षष्ठी पूजन का होना आवश्यक है, षष्ठी पूजन के बिना सालगिरह नहीं मना सकते। तो उनका तो षष्ठी पूजन हुआ ही नहीं, तो जल्दी जल्दी में दूसरे अष्टमी के आने के पहले उन्होंने षष्ठी पूजन कर लिया उनका। तो उस गाँव का नाम पड़ा छठी करा, जहाँ पर उनका षष्ठी पूजन किया गया। तो ऐसा ये मैं सब कुछ बताया क्योंकि भगवान का बाल रूप का दर्शन गौलोक में भी नहीं है। गौलोक धाम भगवान का जो चिरंतन धाम है, वहां पर भगवान का बाल रूप का दर्शन नहीं है। वहां पर हमेशा भगवान 16 साल की उम्र में रहते हैं, आराम से युवा अवस्था में रहते हैं। तो जब उनका बाल रूप का दर्शन होता है तो केवल जहां पर जन्म लेते हैं अवतार लेते हैं वहां पर उनका बाल रूप का दर्शन होता है। तो सभी देवता लोग अपना लोक छोड़कर उनका बाल रूप का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो वैसे ही शिवजी महाराज गोकुल में भी आए थे, तो वहां पर चिंताहरण महादेव बन गए वो। और बाद में जब नंद महाराज घूम घूम कर सब जगह यहाँ बस गए तो यहाँ पर भी आए वो दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए आए तो मैया ने साधु बनकर आए, ऋषि बनकर, और भगवती भिक्षान देही ऐसे मांगा। तो मैया मोती धान्य सब लेकर आई, बहुत बड़ी थाली, और दान करने गई। तो उन्होंने कहा ये दान नहीं चाहिए हमको, हम ये दान लेने के लिए नहीं आए हैं, हम आपके लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं, वो हम दान चाहते हैं। तो वो तुरंत यशोदा माता जी के मन में घंटी बज गई, अरे ये साधु दान नहीं ले रहा है, लाला के दर्शन मांग रहा है, मतलब ये कंस का आदमी है। कंस के आदमी कभी औरत बनकर आए, कभी छकड़ा बनकर आए, कभी बवंडर बन के आए, कभी कुछ बनकर आए, कभी बगुला बनकर आए, अभी ऋषि बनकर आए, लेकिन मैं नहीं फंसने वाली, चले जाओ, लेना है तो लो नहीं तो चले जाओ। तो नहीं तो हम तो लाला के दर्शन चाहते हैं। तो उन्होंने मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया उनके, मैं नहीं करा सकती। अभी लाला तो माँ के गोद में है ना, पूरा समर्पित है अपने गोद में, पूरा नियंत्रण माँ के पास है। तो माँ ने अगर दरवाजा बंद कर दिया मुंह पे, तो क्या चांस है उनके लिए। तो वो सीधे यहाँ पर आए और यहाँ पर ये आशीष्वर वन है, ये आशीष्वर वन है, यहाँ पर उन्होंने बैठकर ऐसा भजन किया है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, ऐसा भजन किया है। अरे रवि इतना कुकू आवाज आ रहा है, क्या कर रहे तुम बैठ के उधर। तो ऐसा भजन किया है, ऐसा भजन किया है कि रो रो कर भजन किया है इस आशा से कि कृष्ण का दर्शन होना चाहिए। जैसे मानो ऐसी अवस्था थी कि बिल्कुल निराश है वो, कि जब जिसके पूरे नियंत्रण में भगवान है वो मना कर रही है, तो क्या आपके लिए आशा रखने का चांस कुछ है क्या। लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुए और यहाँ बैठकर ऐसा, तो मुझे अभी आवाज आ रहा है, तो घुमा दो उसको उधर। हाँ बस ठीक है। तो इतना रोए कि भगवान भी, उनका भी हृदय पिघल गया। है तो बाल रूप में गोद में विराजमान, लेकिन है तो भगवान ही ना। तो उन्होंने अपना सबसे बड़ा शस्त्र निकाला। बालक का सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा होता है? रोना। जब बालक रोता है तो डॉक्टर माता पिता भी फेल हो जाते हैं। हम भी अपने बच्चों को जन्म दिया ना, हमारे बालक रोते थे, हम दिमाग काम नहीं करता था उस समय, सब मेडिकल नॉलेज फेल होता था उस समय। तो मैया ने दूध पिलाया, स्तनपान कराया तो भी नहीं ले रहा है, खिलौना दिया तो भी ठुकरा रहा है, और कुछ दिया तो और रो रहा है, सब ठुकरा रहा है, जितने उपाय किए सब ठुकरा दिया और जोर से रोने लगा। तो मैया एकदम व्याकुल हो गई। उतने में पूर्णमासी आई, क्योंकि पूर्णमासी गुरु है उनकी, जब कोई समस्या होती है तो पूर्णमासी को बुलाते हैं। पूर्णमासी भवानी है, शंकर जी की पत्नी है वो, यहाँ पर वो सब गोपियों के गुरु बनकर लीला में सहभाग है उसका। तो पूर्णमासी आती है, पूछती क्या हुआ, तो लाला रो रहा है। तो बोले अरे वो आशीष्वर महाराज जी आए थे ना, वो भिक्षा मांगने के लिए, और बड़े महात्मा है वो, बड़े दूर से आए, वो उनकी लीला चमत्कार जानते नहीं आप उन्हीं को बुला लो, उनकी कृपा से रोना बंद करेगा बालक। तो जिस माता ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था, उनको मना कर दिया था, उन्हीं को बुलाने के लिए गोपियों को भेजा, और यहाँ पर गोपी आके उनको ले गई है, हमारे शंकर भगवान यहाँ से भागे दर्शन करने के लिए। और जैसे ही बालक को रोते हुए लेकर बाहर आई, जब चरणों को स्पर्श किया हमारे शिव जी ने, तुरंत रोना बंद हो गया। तो हमारे गुरु जी बताते हैं कि किसी भक्त को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो निराशा में भी आशा को देखता है वो कृष्ण की कृपा को आकर्षित करता है, जैसे शिव जी ने किया। और आगे सुनिए, तो मैया क्या बोलती है, जिसको ठुकरा दिया था, कठोर शब्दों से मना कर दिया था, उसको कह रही है अरे अरे बाबा तू यही रुक जा, हाँ अभी अगली बार रोएगा तो तुम्ही को बुलाऊंगी, हाँ जब 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 रोएगा तो मैं तुमको बुलाऊंगी। मतलब क्या बना दिया शिव जी को, खिलौना बना दिया, खिलौना। और इतने बड़े महादेव, हाँ त्रिलोकी के महादेव है वो, उनके पिता भी उनका वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, ब्रह्मा जी। वो इतने बड़े महादेव, इतना बड़ा काम है उनका, इतना बड़ा पद है, इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा अधिकार है उनका, वो यहाँ पर कृष्ण के लिए खिलौना बनने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा अभी यहीं रहो, वन में मत रहो, हमारे पास ही रहो, नंद भवन में ही रहो, मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी, उनको अभिषेक कराऊंगी, उसका जल भी पिलाऊंगी, जो तुम्हारी इच्छा है सो पूरी करूंगी, जब जब रोएगा तब तुमको आना है, उसको रिझाना है। तो शिव जी का ऐसा महात्म्य है यहाँ पर, ये उनका कुंड है, इसके किनारे पर उन्होंने तपस्या किया था, यहाँ पर रोए थे, और हम लोगों को बड़ी शिक्षा दे रहे हो कि कभी भी भगवान की भक्ति में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान कभी भी परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी भी अन्याय नहीं करते हैं। तो आशीष्वर महादेव जी, आज सोमवार का दिन है, देखो कितना पवित्र दिन है, कितनी भाग्य की बात है, अपने आप हम लोग, हमारा प्लानिंग सोमवार का ही बन गया। तो शिव जी को जल चढ़ाना, प्रणाम करना, ये एक वैष्णव के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शिव जी महाराज भगवान के परम वैष्णव भक्त हैं। देखो कैसा है, एक शिव जी का एक कर्तव्य है, ड्यूटी है उनका, वो तांडव करते हैं और वो सृष्टि का विनाश भी करते हैं, कला सिखाते हैं, नटराज के रूप में नृत्य सिखाते हैं, सब कलाकार उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका पूजन करते हैं, वो उनका एक ड्यूटी है, अपना ऑफिस का ड्यूटी कैसा होता है वैसे। लेकिन निजी रूप में पूछेंगे उनका हृदय क्या है, तो उनका हृदय यहाँ है, भगवान के चरणों में है। निजी रूप में, व्यक्तिगत रूप में उनका अगर पर्सनल आप बात कर रहे हैं, तो वो पर्सनली क्या है, भगवान के भक्त हैं वो। और इतने सारे देवता हैं, करोड़ों देवता हैं, उसमें से केवल शिव जी और केवल पार्वती जी, इनको ही परमानेंट ब्रजवास का आशीर्वाद दिया भगवान ने। उसकी कथा ऐसी है कि शिव जी ने अपनी पत्नी को वो राधा कृपा कटाक्ष लिख के दिया, देखो कैसा पत्नी को भी भेंट कैसी देनी चाहिए, इसका प्रमाण है यहाँ पर, आमनाय तंत्र में उसका पूरा वर्णन है, राधा कृपा कटाक्ष सदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। ये श्लोक, ये जो जितने लिखे गए सुंदर श्लोक है, राधा रानी की कृपा के याचना करने वाले श्लोक है, वो शिवजी ने रचे हुए हैं और शिवजी ने रचकर अपनी पत्नी को भेंट में दिया है। फिर उनकी पत्नी ने विष्णु भगवान के आदेश के अनुसार त्रैमासिक व्रत किया है, ब्रह्म वैवर्त में उसका वर्णन आता है, 90 दिन तक 1000 पंखुड़ियों वाले सौगंधिका कमल पुष्प के अलग अलग नंबर में भगवान को अर्पण करते हुए राजा रानी को प्रसन्न करने का उन्होंने प्रयास किया है। और त्रैमासिक व्रत समाप्त होने के पश्चात वो अपने गण ने शिव जी के उनके संरक्षण में उन्होंने वो मान सरोवर में वो सौगंधिका पुष्प निर्माण किए थे, और रोज अभी आज 10 दिए तो कल परसों 20 देना है, तो कई नियम था बड़ा लंबा, पूरा नियम से उन्होंने सौगंधिका फूलों से राधा कृष्ण को त्रैमासिक व्रत पूरा किया। और त्रैमासिक व्रत के पूर्ण होने के पश्चात राधा कृष्ण ने भवानी शंकर को दर्शन दिया है और आशीर्वाद दिया है कि आप ब्रज में ही रहो, इसलिए आप देखेंगे जगह जगह शिव जी का स्थान है, यहाँ पर हर जगह शिव जी का निवास है। देखो यहाँ पर आशीष्वर रूप में है, नंदीश्वर के रूप में ऊपर पर्वत में विराजमान है, काम वन में कामेश्वर के रूप में है, उधर गोवर्धन में चक्रेश्वर के रूप में है, वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में है, मथुरा में भूतेश्वर के रूप में है, और अनंत ऐसे उनके महादेव के रूप है यहाँ पर। और गणेश जी को उन्होंने काम्यवन में निवास किया है, जब बलि महाराज को उन्होंने युद्ध में परास्त किया था तो चतुर्भुज विष्णु भगवान ने प्रकट होकर अपनी पत्नी के साथ दर्शन दिया और गणेश जी को काम्यवन में चिरंतन निवास का वरदान दिया। और एक हमारे ब्रह्मा जी यहाँ पर बरसाने में पर्वत बने हुए हैं, इसके अलावा कोई देवता को यहाँ प्रवेश नहीं है, सबको चप्पल निकाल के आना है, सबके वाहन ब्रज के बाहर पार्किंग करना है, नंगे पैर आकर दिन में जो मीटिंग करना है करना है, रात को यहाँ पर निवास का इंतजाम नहीं है, यहाँ तक कि महाप्रसाद का भी इंतजाम नहीं है। अरे हम लोग कितने भाग्यवान लोग हैं, हाँ इनके घर में जाते हैं सबके और बढ़िया माल खाते हैं महाप्रसाद ही। और ब्रह्मा जी भी आए थे महाप्रसाद लेने के लिए, बोले जमुना जी किनारे में हाथ धोते हैं खाना खाने के बाद में, तो कुछ ना कुछ महाप्रसाद तो पानी में गिरेगा ना, तो मछली बन गए, बोले मछली बनकर मैं उसको खाऊंगा। तो भगवान ने पूरा अपना भोजन किया, कमलाकार आकार में बैठ कर सब भोजन किया, और जब हाथ धोने जमुना जी में गए देखा अरे मछली घूम रही है, ब्रह्मा जी इधर लालायित हैं, तो दोना में पानी लिया और जमीन पे हाथ धो लिया, नहीं दिया अपना प्रसाद, नहीं प्राप्त है। इसलिए हम लोग बड़े, हमको बड़ा ऋणी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, ऐसे धन्यवाद की भावना में घूमना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर रोज महाप्रसाद पा रहे हैं, रोज जहाँ का जलपान कर रहे हैं, जो रसों का सागर है, रसों का सार है, ये सब कुछ इतनी भाग्य की बात है जो देवताओं को भी मुमकिन नहीं है। तो भगवान जब लीला करते ना तो आकाश में डोलते रहते हैं, वो इधर उनको एंट्री नहीं मिलती है, आकाश से देखते उधर ही नाच करते रहते हैं। और हम लोग यहाँ रज में लोटपोट हो रहे हैं, रज में आश्रय प्राप्त हो रहा है, देखो कैसी कैसी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ब्रज में आपको कितना भी कष्ट हो गया तो भी आपको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कृपा देवताओं को भी तपस्या करके प्राप्त नहीं होती है। ब्रह्मा जी को भी यहाँ पर स्थान कब मिला है, 120,000 साल तपस्या करने के बाद में यहाँ पर स्थान मिला है, कोई आसान बात नहीं। हम लोग एक दिन का एकादशी का उपवास नहीं कर सकते हैं, वो भी कुटों को लड्डू खाते हैं बीच में इतना कठोर तपस्या के बाद में ब्रज का निवास मिलता है, हम लोग तो कुछ नहीं करते फिर भी हमको भगवान बड़ी कृपा से यहाँ पर आश्रय दे रहे हैं। इसलिए अनंत बार धन्यवाद देना चाहिए ब्रज के निवास के लिए। हाँ पता नहीं कब दोबारा आएंगे, कब आएंगे, कब प्रसाद पाएंगे, कब दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे, पता नहीं कब होगा, शायद आखिरी बार होगा, ये इसी भावना से आना चाहिए। तो ये आशीष्वर की लीला है, आप बड़े प्रेम से शिव जी का दर्शन करना। उसके बाद हम पावन सरोवर जाएंगे, पावन सरोवर भी बहुत सुंदर स्थान है, समय की थोड़ी कमी है, जल्दी जल्दी बताएंगे आपको। तो पावन सरोवर नंद सरोवर के नाम के विख्यात था पहले, नंद बाबा का बहुत प्राइवेट सरोवर है, वो रोज उसमें स्नान करते, बड़ा विशाल सरोवर है, उसमें यशोदा माई का अपना खुद का घाट भी है, यशोदा घाट, और उसके अंदर यशोदा माई ने राधा रानी के लिए कुआं बनाया था भोजन करने के लिए कृष्ण के लिए, वो भी यशोदा कूप भी उस घाट पे उपस्थित है। तो वो एक दिन वैशाख महीने के द्वितीया के दिन उन्होंने प्लान बना दिया कि हम त्रिवेणी जाएंगे प्रयाग में स्नान करने के लिए, गंगा जमुना और सरस्वती का वहां पर संगम है, तो सब लोग ने प्लान बना दिया। तो कृष्ण भगवान मैया के पास आए, अरे मैया तुम क्या बना रही हो? बोले मटरी बना रही हूँ। अच्छा क्यों, मटरी क्या होती है? बोले जब सफर में जाते हैं ना तो वो सूखा प्रसाद बनाते हैं, तो लंबा समय तक चलता है वो। तो सफर में कौन जा रहा है? बोले बाबा जा रहे हैं, बड़े बड़े गोप जा रहे हैं, सब लोग। कहाँ जा रहे हैं? त्रिवेणी जा रहे हैं। बाबा को आके मिले, उनको ये आइडिया अच्छा लगा नहीं कि ब्रजवासी लोग ब्रज छोड़ के जा रहे हैं। तो ने बाबा से कहा, अरे बाबा कल का दिन बहुत बढ़िया है, अक्षय तृतीया, वैशाख शुद्ध तृतीया, ये बहुत बड़ा मुहूर्त है, अब कल जाना आज के बदले में। बोला अच्छे आइडिया है, कोई बात नहीं। तो रोज अपने सरोवर में स्नान करते थे भोर के समय अंधेरे में, तो अगले दिन उठे वैसे ही टाइम पे अपने। लेकिन जाके देखा तो क्या है, एक अजीब सा आदमी लंबा चौड़ा मुकुट पहना हुआ उनके सरोवर में स्नान कर रहा है। और स्नान तो सब लोग करते हैं, लेकिन ये स्नान होके फिर रज में लोटपोट हो रहा है, फिर रज को लपेट के वापस पानी में गा रहा है, फिर पानी में धो रहा है अपने आप को, फिर रज में लपेट रहा है। ऐसा तो केवल हाथी करता है और कोई नहीं करता है, पता है ना आपको। तो पूछा, महाराज जी आप कौन हो? क्योंकि उनको सब नंदगांव के जितने रहवासी थे सब जानते थे उनको, वो भी जानते थे कि ये हमारे रहवासी है, ये तो नंदगांव के नहीं है, बाहर से आए हुए। महाराज आप कौन हो? तो कहते मैं प्रयागराज हूँ, क्योंकि सब धाम व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति रूप धाम के रूप में सेवा करते हैं। तो अच्छा दंडवत किया महाराज ने। बोला महाराज आपका परिचय आपने दिया, लेकिन आप जो कर रहे हो वो समझ में नहीं आया मुझे। आप डुबकी लगा रहे हो, रज में लोट हो रहे हो, फिर डुबकी लगा रहे हो, ये क्या रहस्य है? बोलते हैं रज में इतनी शक्ति है और इस जल में इतनी शक्ति है, दोनों हमको चाहिए, रजस्थान भी चाहिए, जलस्थान भी चाहिए। साल भर में सब लोग हमारे अंदर स्नान करके अपना पाप छोड़ते हैं, हम एक दिन छुट्टी लेते हैं और यहाँ पर आके स्नान करके सारे पाप धुलवा देते हैं, काले काले बनकर आते हैं, जब स्नान करके लोटपोट होते हैं तेज को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो देख रहे हैं जैसे लोटपोट रहे तो तेज उनका बढ़ते जा रहा है, अंधेरे में भी उनकी रोशनी सब जगह फैल रही है। तो दूसरी बाजू में देखा तो सब बहुत सारी सुंदर सुंदर नारियां वहां पर स्नान कर रही हैं। तो उन्होंने पूछा आप कौन हो? तो कह रहे गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी इंद्रायणी भीमा, सब नाम ले लिए उन्होंने। बोला आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले हमारे अंदर सब लोग स्नान करते साल भर और अपना सब पाप छोड़ते, हमारा तेज नष्ट होता है, हम पाप लेकर निस्तेज हो जाते हैं, और अक्षय तृतीया के दिन नंद सरोवर में आपके सरोवर में आके स्नान करते हैं और पूरा पाप धोलकर अपने तेज को प्राप्त करके फिर सेवा करने चले जाते हैं। नंद बाबा ने अपना टिकट वहीं कैंसिल कर दिया, बोले नहीं जाना है। अरे वो लोग यहाँ आके स्नान कर रहे थे, मैं वहां क्यों जाऊं? और सारी मटरी घर में ही खा ली है ना, सफर तो हुआ नहीं। तात्पर्य क्या है, उसी दिन से उसका नाम पावन सरोवर हुआ, सबको पावन करने वाला, यहाँ तक कि पावन करने वाले तीर्थों को भी पावन करने वाला ये सरोवर है, पावन सरोवर। बैग को संभाल कर रखना, पीछे तुम्हारा भाई बैठा है। हाँ तो इस प्रकार से ये पावन सरोवर बन गया, और पावन सरोवर श्री कृष्ण भगवान के सख्य लीला का बहुत ही प्रिय स्थान है। सबसे टॉप नंबर में ग्वाल फोकरा है जो गोवर्धन में विराजमान है, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। और नंबर दो का फेवरेट जो उनका स्थान है वो ये है, यहाँ पर वो सखाओं के साथ बहुत लीला करते हैं, गायों को पानी पिलाते हैं। सनातन गोस्वामी ने वहां पर भजन किया है, अकीर्तन कृष्णदास बाबा ने हमारा वहां भजन किया हुआ है, बल्लेवाचार्य ने वहां बैठकर भागवत सप्ताह किया, उनकी बैठक वहां पर है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने काम्य वन से आकर उसमें स्नान किया है, उनकी बैठक भी वहां पर है। यशोदा घाट है, अरे क्या क्या नहीं है वहां पर, कितना पवित्र स्थान है वो। केवल स्मरण करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं, इतना पवित्र स्थान है। उसके आगे जाएंगे तो मोती कुंड है, मैंने आपको कथा बताई ना, कृष्ण भगवान ने मोती बोकर मोती बनवाए, वो उसके आगे मोती कुंड है जो नंद भवन के बिल्कुल पीछे, अभी तो बहुत दूर लगता है, लेकिन वो उस समय का विशाल महल था नंद बाबा का, तो वो बिल्कुल पीछे ही था उनके महल के। और यहाँ पर आप जाएंगे आगे नंद बैठक है, उसमें पहाड़ पर चरण पहाड़ी भी है, भगवान के ना नन्हे नन्हे चरण चिन्ह का वहां पर निशान है, एक ही चरण का है, अभी फिलहाल एक ही है, लेकिन कई थे, क्योंकि भगवान जो लीला करते थे ना, तो ये शंकर भगवान जो पर्वत बने हैं, जो ब्रह्मा जी पर्वत बने वहां पर, ये सब लोग ना भाव से पिघलते थे, भाव से भाव विभोर होकर पिघलते थे, तो ये सबके चरण चिन्ह वहां पर निर्माण होते थे। तो भगवान जब चले गए यहाँ से तो गोपियां उनके चरण चिन्ह के नन्हे नन्हे चरण चिन्ह के पास बैठकर रोया करती थी याद में कि कैसे भगवान यहाँ पर लीला करते थे। बहुत विरह की स्थली है वो, जहाँ पर बैठकर गोपियां रोती थी भगवान की याद करके। इस तरफ जाएंगे तो एक नंद बैठक है, यहाँ पर बहुत सुंदर स्थान है, बहुत देखिए ये स्थान जितने भी है ना ये सब प्रेम के स्थान है, कोई मुक्ति मुक्ति कोई तपस्या के स्थान नहीं है। तपस्या बहुत लोगों ने की है लेकिन प्राप्त किया है प्रेम, ये ध्यान रखना। अभी आप गया जाओगे उधर हिमालय जाओगे तो केवल मोक्ष ही मोक्ष पाओगे और कुछ नहीं आगे मिलेगा आपको। यहाँ पर वो सब कुछ मिलने के बाद भी प्रेम और भक्ति का भी सिंचन होगा आपके ऊपर, वर्षा होगा वर्षाओ। तो नंद भवन में ऐसा एक रूल था कि जब तक भगवान बालक थे ना तब उनको बछड़ों का भार दिया था, जिम्मेदारी थी चराने का। और ऐसा रूल था कि नंद भवन के टॉप में जाकर मैया देखेगी चारों तरफ तो उसकी नजर कहां तक पहुंचेगी, वहीं तक जाना है, उसके आगे जाना नहीं। मतलब क्या, अंडर सुपरविजन, सीसीटीवी के अंडर गाय चराना है आपको, उसके आगे नहीं जाना है। मानो एक तरह से नजर बनी हुई थी, कहां जा रहा है कहां जा रहा है कहां है, अभी किस समय कहां पर है, कहां फंस तो नहीं गया, किधर कोई तकलीफ तो नहीं है। और वो इतनी व्याकुल होती थी मैया ना, हर दो घड़ी में जाकर ऊपर देखती थी किधर है काना किधर है, एक नीचे देखती थी काना किधर है और आकाश में देखती थी सूरज किधर है, क्यों अभी तक ढला क्यों नहीं, कितना ऊपर क्यों है, तो नीचे आएगा तो वापस लौट के आएगा ना, ऐसा भाव था उनका। तो जब लौट के आता था कृष्ण भगवान अपने गाय को बछड़ों को लेकर, तो वो कहते हैं कि नंद यशोदा माई की जो आंखें है ना वो हमेशा अश्रु से भरी रहती थी और स्तन हमेशा दूध को टपका देते रहते थे। इतना भाव था कि कभी स्तन से दूध निकलना बंद नहीं हुआ, कभी आंखों से अश्रु निकलना बंद नहीं हुआ, इतना वात्सल्य प्रेम था। और जब भी सूरज ढलने लगता था ना तो इनको ऐसा रहा जाता नहीं था कि अभी आएगा कान्हा मेरा तो मैं ऊपर रहूंगी तो ऊपर चढ़ने में और देर हो जाएगी, तो ये दोनों नीचे आते थे ताकि जमीन के सर पर उनको रिसीव किया जाए, उनको स्वागत किया जाए, बाद में फिर गोद में लेकर ऊपर लिया जाए। तो ये दोनों नीचे आकर बैठते थे नंद बैठक नाम की जगह पर और भाग से तेज पदम से भाग के वो आते थे और एक गोद में बलराम भैया एक गोद में कृष्ण भैया बैठते थे, दोनों पांव ऐसे ऐसे। और ये भी बोल रहे, ये भी बोल रहे, ग्वाल बाल बोल रहे, सबकी सुन रहे हैं, ऐसे किल्लोड़ हो रहा है सबका, आज ऐसे हुआ आज ऐसे हुआ, ये कुछ बोल रहा है वो भी कुछ बोल रहा है। और बहुत देर के बाद हृदय भर के बातें करने के बाद में फिर उनको उठाकर ऊपर चले जाते थे। फिर वहां पर आरती पूजा, फिर मक्खन खिलाना, फिर स्नान कराना, फिर भोजन कराना, स्तनपान कराना, फिर लोरी गा के सुलाना, ये बहुत सुंदर व्यवस्था होती थी। तो नंद बैठक वो स्थान है जहाँ पर वत्सपाल ग्वाल बाल बनने के बाद में वो जो आते थे वहां पर तो उनको स्वागत करते थे वहां पर बैठकर। बहुत सुंदर चित्रपट है, बड़ा ऐसे बड़े मूछ वाले सुंदर नंद बाबा बैठे हैं, उनके गोद में एक नीला बालक एक गोरा बालक बैठा है, एक गोरा पांव एक नीला पांव ऐसे बैठा हुआ है, उसके आगे यशोदा कुंड है। हाँ उधर जब कृष्ण भगवान छोटे थे ना तो उनको रोहिणी मैया कृष्ण बलराम को स्नान किया करते थे, स्नान देते थे उनको वहां पर। तो गोपाल चंपू में ऐसा वर्णन दिया है कि जब बालक थे तो वो उनको वहां पर पूरा स्नान कराते थे, छोटे बड़े हो गए तो बाकी भी कुल्ला वुल्ला करते थे और जब स्नान करने का समय आता था कपड़े उतारने का तुरंत वहां से गायब हो जाते थे और कहीं स्नान करके लौट के आते थे। तो उन्होंने चर्चा किया कि भाई ऐसा ऐसे हो रहा है, हम भी ये अनुभव कर रहे हैं। तो उनका निष्कर्ष ये हुआ कि अभी वो बड़े हो गए हैं, उनके कपड़े भी उनको टाइट हो रहे हैं और अभी युवा अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं तो उनको संकोच हो रहा है मैयाओं के सामने कपड़े उतारने के लिए। तो नंद बाबा ने और एक कुंड बना दिया प्राइवेट उनके लिए अलग से, उसका नाम है कृष्ण कुंड, जो रस्ते में लगा हमको राइट साइड में। तो जब ही थोड़े से बड़े हो गए तो कृष्ण कुंड में दोनों भैया स्नान करने लगे, तो यशोदा कुंड में रोहिणी मैया दोनों मिलकर उनको स्नान करा दी। यहाँ पर एक स्थान है टेर कदम, जिसके बाद तुरंत हम जाएंगे वहां पर। वो स्थान इतना मतलब नंदगांव में एक है जन्माष्टमी और एक है गोपाष्टमी, ये दुनिया में कहीं भी नंदगांव वाले रहेंगे ना तो उस दिन माँ लौट के आते हैं, इतना बड़ा उत्सव है गोपाष्टमी का। जिस दिन 5 साल के भगवान हुए उस दिन शांडिल्य मुनि ने मुहूर्त निकाला और बड़े गायों का जिम्मेदारी दे दिया। बड़ी लंबी कहानी है उसकी, लेकिन संक्षेप में सभी गायों ने भी विनती किया ग्वाल वालों को, अभी हमारे को कृष्ण के साथ घूमना है, हमारे बच्चे घूमते हैं, हमारा क्या, हमारा कब नंबर लगेगा। तो उनके भी 84 खंभा में डिस्कशन हुआ कि भाई सब गायें विनती कर रही है, यहाँ पर ग्वाल बाल कृष्ण को चिढ़ा रहे हैं, अरे तू तो छोटा ही है तो तुझ पर भगवान बाबा को विश्वास नहीं है इसलिए बछड़े ही दे रहे हैं तुझे, अभी भी बड़ी गाय का जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, तू तो विश्वास के लायक ही नहीं है। तो एक दिन बहुत चिढ़ाया, सप्तमी का दिन था वो, तो रो रो के आए घर पे और सीधा सो गए। और उसी दिन यहाँ पर डिस्कशन हुआ, मुनि आए थे शांडिल्य मुनि, उन्होंने मुहूर्त निकाला और तय किया कि आपको कल का दिन बहुत अच्छा है और कल ही दिन बड़ी गायों का जिम्मेदारी उनको देना चाहिए, वही गोपाष्टमी का दिन है, कार्तिक शुद्ध अष्टमी का दिन। तो सुबह वो उठे नहीं, क्योंकि नाराज थे ना वो, सब लोगों ने उनको ताने मारे थे बहुत, तो इनको खुशखबरी देनी थी, तो जोर से बोला, अरे तुमको आज बड़ी गायों का जिम्मेदारी देना है, क्यों सो रहे हो अभी तक, उठो। रोज सुबह उठकर मुरली बजाते हैं, सबको अलार्म देते हैं, सब लोग उठ जाते हैं, उसे अलार्म ही नहीं दिया, फिर भी सब लोग उठ के तैयार होके आ गए, उनको खबर मिल गई थी, गायें भी तैयार होके आई 108 झुंड में। और फिर कृष्ण भगवान ने जब बताया तो ऐसे बिस्तर से उड़े वो, ऐसे झट से तैयार हो गए, सज झज कर आ गए, सारी गायें खड़ी है वहां पर, और उनको बड़े समारंभ पूर्वक, बड़े उत्सव के साथ, मंत्रों के साथ, बड़े शानदार तरीके से उनको रत्न भरी छड़ी दी गई, और सभी गायों की पूजा की उन्होंने, और फिर गौचारण शुरू हुआ गोपाष्टमी के दिन। बहुत दूर तक गए, भाई लंबी कहानी है, मैं छोटी से बता रहा हूँ आपको। बहुत दूर तक गए तो कृष्ण हमारे थक गए, फिर ग्वाल वालों को पता था कि थका हुआ चेहरा देखेंगे लाला का तो मैया कहेगी कल छुट्टी ले लो, कल नहीं भेजूंगी उसको, बड़ा थक जाता है मेरा बालक। तो ग्वाल वालों को पता था कि आज हमको इतना दूर जाके, एक तो माता पिता का वो है ना सर्वेक्षण, वो नहीं था, जो मन मर्जी करो कहीं भी घूमो आराम से, कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, तो बड़ा आनंद लिया उन्होंने दूर जाके। लेकिन कृष्ण का थका हुआ चेहरा देखकर उनको लगा कि कल शायद नहीं भेजेंगे तो इसको रिझाना चाहिए। तो आते वक्त इतना हंसाया, इतना रिझाया, इतने क्या स्वांग बनाए, इतना उनको हंसाया कि चेहरा पूरा प्रफुल्लित हो गया। तो फिर मैया बाबा ने फिर कैंसिल नहीं किया उनका अगले दिन का। तो फिर वो उस दिन वो एक वहां पर टेढ़ कदम जगह है, वहां पर ऊंचे ऊंचे कदम के पेड़ हुआ करते थे, सभी गाय आई वहां पर, कुछ गाय यहाँ वहां इतर बितर थी, तो भगवान हमारे कदम के पेड़ के चोटी पर जाके बैठ गए, अपनी मुरली खोली और मुरली बजाना आरंभ किया। तो मुरली में 8 स्वर होते हैं, हर एक स्वर का अलग अलग परिणाम है, एक एक स्वर ऐसा है ना कि चांद भी अपना दिशा भूल जाता है घूमने का, यमुना जी भी गोल गोल घूम के उल्टा भूलने लगती है। खाली मुरली की आवाज सुनकर बता रहा हूं मैं आपको, मुरली की तान सुनकर यमुना जी भी उल्टी बहने लगती है, और आकाश में तारे भी उल्टा उल्टी कक्षा में घूमने लगते हैं। तो छठवां स्वर ऐसा है, उसके दो परिणाम है, छठवें स्वर में एक स्वर में एक परिणाम है कि पत्थर पिघल जाते हैं, जितनी भी शिलाएं बनी है मुरली सुनकर वो छठवें स्वर के बाद में बनी है। और छठा स्वर जो ऐसा है वो बचता है तभी सारी गायों को अपना ही नाम कान में सुनाई पड़ता है, मुरली के कान में सुनाई पड़ती है, हे मृदंगिनी, हे कालिया, हे धूमर, ऐसे नाम सुनाई पड़ता है। तो उन्होंने जाकर ऊपर जाकर छठवीं धुन बजाई और जितनी भी लाखों करोड़ों गायें थी वो सबको उनका ही नाम सुनाई पड़ा, मानो उनको नाम से कृष्ण व्यक्तिगत रूप से बुला रहे हैं। तो सब लोग भाग के आई गायें, कैसे आई, आंख ऐसे ऊपर, कान भी ऊपर, पूंछ भी ऊपर, और मुंह खुला हुआ, और शब्द होकर सुन रही है मुरली का आवाज, उनके बालक उनका दूध पी रहे थे वो भी, उनका मुंह खुल गया ऐसे, कुछ दूध मुंह में है, कुछ टपक रहा है जमीन पर, जमीन को माँ प्रसाद प्राप्त हो रहा है, ऐसे वर्णन सुंदर वर्णन दिया। इतने सब सृष्टि मुग्ध हो गई थी भगवान का वो स्वर सुनकर, फिर भी कुछ गायों ने प्रतिसाद नहीं दिया, तो भगवान ने सब गाय को इकट्ठा किया, बोला यही रहो मैं आता हूँ, भाई नीचे उतरे और उन गायों को थपथपाकर पर्सनल लेके आए, क्या कहते हैं अटेंशन सीकिंग होता है ना, उनको सुनाई पड़ रहा था लेकिन सुनकर भी अनसुनी कर रहे थे, तो वो लेकर आए उनको, और फिर सभी लोगों को इकट्ठा करके फिर मुरली बजाते हुए दोनों भैया जो है वो नंद भवन की ओर चले गए। आज भी ये उत्सव इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, कोई भी घर पे रहता नहीं इस समय, सब लोग बाहर रहते हैं, सब गाय गली गली में घूमते रहते हैं, हजारों लाखों गाय, सबको गाय को खिलाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनके चरणों का वंदन करते हैं, और टेढ़ कदम पे बहुत बड़ा उत्सव होता है, तो संध्या को ठाकुर जी लौट के आते हैं उसके उपलक्ष में उसकी याद में बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। तो वो स्थान है टेढ़ कदम का, वहां पर हमारे जो आचार्य हैं हमारे संप्रदाय के रूप गोस्वामी, जो रूप मंजरी के अवतार हैं, उन्होंने वहां पर आश्रय लिया था जब उनका मंदिर वृंदावन में बन रहा था गोविंद जी का, तो उस जगह पर छोड़कर वो यहाँ पर आके एकांत भजन कर रही थी। हाँ बता रहा हूँ, तो वहां पर उन्होंने बैठकर एकांत में अपने चिंतन में विदग्ध माधव, ललित माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ऐसे सुंदर सुंदर ग्रंथों का निर्माण वहां किया है। तो इतने मग्न थे, तो एक दिन उनके भाई का जन्मदिन था सनातन गोस्वामी का, और वो भी बेचारे पावन सरोवर के तट पर भजन कर रहे थे, उनकी भी कुटी वहां पर है, तो उनका जन्मदिन था, रूप गोस्वामी को मन में आया कि बड़े भैया का जन्मदिन मनाना चाहिए। बाद में लगा इतना बड़ा इंतजाम कहां से करूं, मैं तो फकीर आदमी हूं, फिर अपने काम में लग गए। तो शुद्ध भक्त की इच्छा है एक और शुद्ध भक्त का जन्मदिन मनाने की, तो राजा रानी स्वयं आई। सब लोग सुन रहे ना, इधर उधर देखना नहीं आप। अभी राजा रानी आ रही है अपने सर पे टोकरी पकड़कर, उसमें बहुत दिव्य चावल है, अभी अभी निकाला हुआ गाय का दूध है, मिष्टी मतलब मिठाई सब रखी हुई है, खीर बनाने का सामान है उसके अंदर। और आती है बोले महाराज जी, किसको? रूप गोस्वामी को बता रही है, महाराज जी ये सामान लाई हूँ। बोले कहाँ से लाई? मेरी मैया ने भेजा है। क्या है उसके अंदर? बोले खीर बनाने का सामान है। अच्छा, मैं तो बड़ा व्यस्त हूँ अपने काम में, तू ही बना देना। तो राजा रानी ने वहां पर अपने हाथ से खीर बनाई है और फिर वो खीर लाके दी है, और लाके देने के बाद तो अदृश्य हो जाती है। उतने में सनातन जी वहां पर आते हैं, तो सनातन जी महाराज को बड़े धाम प्रेम से वो खीर अर्पण करते हैं और वो खाने लगते हैं। जन्मदिन की बधाई हो। और जब खाने लगते हैं तो उनके होते हैं आंखों से अश्रु बहते हैं, रोमांच खड़े होते हैं, कंठ गदगद होता है, वो बोल नहीं पाते हैं और बोलते हैं, अरे भैया तूने ये खीर कहाँ से लाई? बोले कन्या आई थी यहाँ पर, उन्हें बोले मैया ने भेजा है, तो मैंने समय नहीं था मेरे पास, तो मैंने उससे ही खीर बनवाई, वो खीर है ये। तो बोले बताओ बताओ लड़की कैसी थी? तो बोले वो नीला घाघरा पहनी हुई थी, गुलाबी कलर का ब्लाउज पहनी हुई थी, बहुत सुंदर थी, कमल नई नई आंखें थी उसकी, बहुत मधुर भाषण से उसका ध्वनि इतना दिल को मोहित कर रहा था। अरे पगले, राधा रानी स्वयं थी वो, तुम यहाँ बैठकर भजन कर रहे हो राधा रानी का और उसको ही सेवा में लगा रहे हो। उसे डांटना आरंभ किया, लेकिन वो डांट रहे हैं उसको और खीर भी खा रहे है, छोड़ने रहे उसको, उसको क्यों खा रहे ऐसा बोल रहे, वो भी खा रहे ये भी खा रहे। इतना मधुर स्वाद था, दोनों ने आंखों में अश्रु लेकर बहाते बहाते उस खीर को खाया। राधा रानी ने स्वयं आकर रूप गोस्वामी को दर्शन दिया, खीर खिलाई दोनों भक्तों को बड़े प्रेम से। वो स्थान है, वो सुंदर कुंड है वहां पर। ऐसे नंदगांव में बहुत अद्भुत अद्भुत स्थान है, उसके आगे जाएंगे वृंदा कुंड है, तो वहां की कहानी में वहां बताऊंगा आपको। यहाँ इस तरफ जाएंगे आप तो एक सुंदर स्थान है वहां पर, वो है उद्धव क्यार। उद्धव जी यहाँ पर कृष्ण का संदेश लेकर मथुरा से आए थे, मैया के लिए एक खत था और गोपियों के लिए राधा रानी के लिए एक खत था उनके पास, ढूंढ ढूंढ के आए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर ना उन्होंने पूछा नंद बाबा कहाँ रहते हैं, तो सभी लोग ऐसे ना ब्रजवासी लोग कृष्ण के विरह में ऐसे चित्रपट की तरह स्तब्ध, ऐसे मतलब क्या कहें उसको, बड़े दुखी थे उस समय। तो पूछा उन्होंने नंद बाबा का घर कहाँ है, उनको मिलना है मुझे। राजा के वेश में थे ना वो, बड़े बड़े मंत्री थे भगवान कृष्ण के, भगवान का ही रथ में बैठकर आए थे, भगवान का ही मुकुट धारण किया था, उनका ही रंग है, उनका सब कुछ उनके जैसा ही है। तो सबको लगा कि कृष्ण आ गए ब्रज में वापस, भाग के गए, दिखा रही कृष्ण नहीं, पीछे आ गए। फिर उन्होंने पूछा कि नंद बाबा का घर कहाँ है, तो ब्रजवासियों ने बताया देखो ये नदियां, दो नदियां बह रही है ना, वो पर्वत से आ रही है, इसके किनारे किनारे चढ़ के जाना, फिर नंद बाबा का घर मिलेगा। तो बेचारा उद्धव जी चले गए ऊपर, ऐसे दोनों नदी के किनारे किनारे ऊपर चढ़ के गए, तो देखा कि एक बड़ा भवन है, उसके अंदर से दो नदियां आ रही है, तो उसके अंदर चले गए, तो पता चला कि नंद बाबा के आंसुओं की एक नदी है और एक नदी यशोदा मैया के आंसुओं की बह रही है। जब से गए कृष्ण तब से रो ही रहे हैं, तो दंग रह गए उद्धव जी महाराज को, तो समझ में नहीं आया कैसा भी कोई प्रेम होता है। हम तो बृहस्पति के शिष्य हैं, इतने ज्ञानी हैं, पंडित हैं, भक्त हैं, भगवान का सानिध्य है, इतना प्रेम है, रोज खाना पीना रहना शिकार करना गले मिलना रोज का हमारा काम है, लेकिन इतना प्रेम तो हमने कभी अनुभव नहीं किया। फिर आदान प्रदान हुआ, फिर गोपियों से मिलने का जब समय आया तो गोपियों ने कहा कि हम पब्लिक में आपसे दिल खोल के बात नहीं कर सकते हैं, तो उनको जंगल में लेके गए वो, हरे कृष्णा, जंगल में लेके गए और एकांत में वहां पर पत्थर का सिंहासन पे उनको बिठाया और फिर अपना दिल का बात खोलना शुरू कर दिया। कोई रो रही है, कोई हंस रही है, कोई ड्रामा कर रही है, कोई कृष्ण का लीला करके दिखा रही है, कोई गीत गा रही है, कोई जमीन पे लोटपोट हो रही है, कोई आंसू बहा रही है। ये ऐसा विचित्र प्रेम का दर्शन प्राप्त करके उद्धव जी पूरे पागल से हो गए। क्या सोच कर आए थे कि ऐसे करूंगा, उनको सांत्वना दूंगा, योग सिखाऊंगा, ज्ञान दूंगा, विरक्ति दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सारा प्लान फेल हो गया। जैसे हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर हमारे तो हमको जब भी विजिट पे बुलाते हैं, विजिट पे घर में कोई बीमार है तो विजिट पे जाते हैं हम लोग, तो बताते फोन पे क्या हुआ, हम पूछते क्या हुआ, छाती में दुख रहा है, हाथ में भी दुख रहा है, पसीना भी आ रहा है, धड़कन भी बढ़ रही है, तो हम लोग सोचते जाते हैं कि क्या हुआ रहेगा, वैसे दवाइयां का प्लानिंग करके जाते हैं कि ये दवा देगी उनको, लेकिन आके देखते हैं उनको पेट की बीमारी है, तो हमारा पूरा हार्ट का प्लानिंग फेल हो जाता ना। वैसे वो जब मथुरा से आ रहे थे तो भगवान ने कहा था गोपियां बड़ी दुखी है, तो ये बृहस्पति के शिष्य, ज्ञानी शिष्य सोच रहे हैं कि मैं उनको ज्ञान दूंगा, योग सिखाऊंगा, प्राणायाम सिखाऊंगा, दुख से मुक्ति दिला दूंगा, समान मन करूंगा, उनका समतल मन करूंगा, संतुलित मन को बनाऊंगा, सोचकर आए थे। लेकिन जब आए ना तो संजय का समय था, सब जगह दूध निकालने का काम चल रहा था, उसके म्यूजिक सुनकर ही बड़े भाव विभोर हो गए। उसके आगे चले गए तो बहुत सारी गोपियां ना ध्यान में बैठी थी, उनको लगा अच्छा है कुछ योगा का नॉलेज है तो मैं आगे योगा सिखा सकता हूँ, उनको योग सिखा सकता हूँ। पूछा क्या योग कर रही हो, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ना बड़े सिंपल से भक्त थे, मतलब गोपियां थे एकदम सीधे साधे, वहां दिल में बहुत सीधा था, ये हमारे कन्हैया टेढ़े थे, तो उनको दिल में बिठा लिया और दिल को भी टेढ़ा कर लिया। अब ये टेढ़े दिल में टेढ़े भगवान ऐसे फिट हो गए हैं, अभी वो चले गए हैं तो हम उनको भूलना चाहते हैं, तो उनको हम हृदय से निकाल कर भूलना चाहते हैं, उसके लिए योग कर रहे हैं। तो उद्धव जी बोले ऐसा योग तो मैंने कभी सीखा नहीं था, हम तो जिसको भूल गए हैं उसको याद करके दिल में बसाने का योग सीख कर आए हैं, ये दिल में जो बस गए उसको निकालने का योग कर रहे हैं, ये तो मैंने सीखा नहीं कैसे योग। तो मतलब हमारी भाषा में उद्धव जी आते ही क्लीन बोल्ड हो गए, एकदम क्लीन बोल्ड हो गए, तो समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है, ये भी क्या, ये भी कैसा प्रेम होता है। तो कहने की बात ये कि वहां ले गए उनको एकांत में, और फिर गोपियों ने ऐसा प्रेम का प्रदर्शन किया कि उद्धव जी पूरे भाव विभोर हो गए, सब ज्ञान का घमंड सब टूट गया, सब प्लानिंग उनका फेल हो गया, और वो बोलने वाले थे बहुत लेकिन तब जो हो गए, और गोपियां ही कहती जा रही है यहाँ पर ये हुआ, वहां पर ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर हमने रास रचाया, फिर हमारा वस्त्र हरण किया, फिर हमने ऐसा किया वैसा किया, माखन चुराया, डांटा उनको, 50 कहानियां सुनाई उनको। तब उसको ध्यान में आया कि इनको सांत्वना देने के लिए इनको बोलते रहना चाहिए, जब ये बोलते रहेंगे कृष्ण की याद करते रहेंगे तो फिर उनको दुख उनका कम होते हुए नजर आ रहा है, कृष्ण की याद में कृष्ण की कथा बताते हुए बड़े आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो मैं चुप रहूंगा इनको बोलने देना। 2 दिन के लिए आए थे, 6 महीने तक यहाँ रहे वो, और वो ऐसी यात्रा थी, एक यात्री था और बहुत सारे वक्ता थे उसके अंदर, सारी गोपियां ऐसा अपनी कहानी सुना रही है एक यात्री को, और 6 महीने पूरे ब्रज का चप्पा चप्पा छान मारा, और सब जगह क्या क्या हुआ सब गोपियों ने पूरा ब्रज जिला का वर्णन किया, और वो शांत रहे, गोपियों ने अपना उपाय खुद ही कर लिया। फिर आचार्य लिखते हैं कि गोपियों के संग में, राजा रानी के संग में वो कृष्ण को भी भूल गई, और फिर 6 महीने के अंत में राजा रानी ने उनको याद किया, भैया तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कब जाओगे, तो फिर विदा लेकर चला गया। वो जाते वक्त मन में सोच के चला गया कि इन गोपियों के चरणों की रज मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ये जो उनका प्रेम है वो दिल से मुझे चरण रज नहीं देंगी, क्योंकि मैं कृष्ण का मंत्री हूँ, कृष्ण जैसा ही मेरा स्वरूप है, मेरा बड़ा अधिकार है, रथ में बैठकर राजवंश में आया हूँ, तो मैं रज मांगूंगा थोड़ी देंगे वो तो बेचारी सिंपल गोपियां हैं। तो मन में विचार करके गए कि मैं इनकी रज लूंगा और ऐसा इंतजाम करूंगा कि बिना संकोच इनकी रज प्राप्त हो जाए। वापस लौट के गए, कृष्ण को रिपोर्ट दे दिया यहाँ पर क्या क्या हुआ, सब लोग पूछ रहे भैया 2 दिन के लिए गए थे, 6 महीने के लिए क्या कर रहे हो, तो संक्षेप में समझाया, लेकिन बहुत गंभीर भाव में थे वो, बहुत गंभीर भाव में थे, इतना गहराई के अंदर, मतलब बड़ा दिव्य चिंतन कर रहे थे वो कैसे करना है इसको। तो बोले मैं जा रहा हूँ, कृष्ण ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रज में जा रहा हूँ। तो क्यों जा रहे हो, अभी तो जाके आए ना, काम तो हो गया हमारा, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, मैं तपस्या करूंगा कि मेरा उद्धव जी का जन्म क्या कहते हैं उसको कैंसल होकर मैं घास का पत्ता तृण का पत्ता बनूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने 6 महीने में यहाँ घूमते हुए देखा है कि जब जब गोपियां चलती है तो तृण के पत्तों पर चलने में उनको कोई संकोच नहीं है, कोई ऐसा कोई एम्बेरसमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं उनको बिना संकोच उनके चरणों की रज सहजता से लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं सोचा हूँ कि मैं तपस्या करूंगा और तृण का पत्ता बनूंगा। तो उद्धव जी लौट कर आए हैं, कुसुम सरोवर के वन में उन्होंने तपस्या किया है और वो गुल्मलता यानी तृण का पत्ता बने हुए हैं, वहां पर उनका अभी भी निवास है। दुनिया में केवल 2 व्यक्तियों ने उल्टी तपस्या की है, एक टॉप में थे ब्रह्मा जी हमारे, 1,20,000 साल तपस्या किया, क्या करने के लिए, पत्थर बनने के लिए, पर्वत बनने के लिए, और एक हमारे उद्धव जी है, एक कृष्ण भक्ति में इतना ऊंचा स्थान किसका नहीं हो सकता है, इतना सानिध्य कृष्ण का किसको नहीं मिल सकता है, वो उसने वो सानिध्य का उच्चतम स्थान छोड़कर घास का बनना पत्ता बनने के लिए तपस्या किया है, सोचो आप, ये भक्ति कहते हैं इसको। तो आज भी वहां पर विराजमान है वो घास के रूप में पत्ते में, और जब कृष्ण यहाँ से जाने लगे अंतर्दान होने के लिए लीला समाप्त करके, तो उन्होंने उद्धव को आदेश दिया कि आप मेरे साथ आने की चेष्टा मत करना, आप यही रुकना कि मेरी अब पत्नियां यहाँ पर रो रो के आएंगी ना, तो आपको उनको बोध देना है। तो पत्नियां रो रो के आई हैं और कुसुम सरोवर पे उन्होंने संकीर्तन किया है, उनके संकीर्तन से मतलब विरह भरे प्रेम संकीर्तन से उद्धव जी गुलमलता रूप से मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। और कुसुम सरोवर के किनारे उद्धव कुंड में तपस्या किया है, कुसुम सरोवर किनारे उन्होंने कृष्ण की पत्नियों को 30 दिन तक भागवत सुनाया है, और भागवत सुनाने का आरंभ करते ही उनका दुख निवारण हो गया है। इसका मतलब क्या होता है, भागवत स्वयं कृष्ण है, उसका पहला श्लोक सुनते ही दुख निवारण हो गया। फिर आनंद में पूरा लीला का दर्शन किया, दशम स्कंध में खुद का भी दर्शन किया, 12वां स्कंध समाप्त होने के बाद में वो अपने रूप में विलीन होकर गौलोक धाम चली गई। ऐसा उद्धव जी का महिमा है। तो उद्धव जी नंदगांव में आए हैं, ये हमारे गोसाई लोग बताते हैं कि उद्धव की नाटिका जो होती है ना रासलीला, यहाँ पर बड़ी मंडली आती है, 8-8 घंटे के 8 दिन तक रात को नाटिका करते हैं, उद्धव जी का लीला का ड्रामा करते हैं यहाँ पर। 8 घंटे का रोज होता है, 8 दिन तक चलता है, और सब लोग रोते हैं सब ब्रजवासी, क्योंकि दो प्रसंग यहाँ पर बहुत दुखदायी है। एक कृष्ण का गमन, अक्रूर आके उनको ले गया, तभी ब्रजवासियों का दिल जो है पूरा टूट कर विदीर्ण हो गया था, और दूसरा उद्धव जी आए तो उद्धव जी का आना और उनका आदान प्रदान जो हुआ है वो बड़ा दुख का प्रसंग है। सब ब्रजवासी लोग हमारे वो बिरजी बाबा हमारे पास आए थे ना, तो हमको वो कहानी बताते थे हमेशा, देखो सुनना है, बहुत रोचक कहानी है ये। बिरजी बाबा मतलब ब्रजभूषण गोस्वामी, जो नंदीश्वर मंदिर है ना उसके नीचे ही उनका घर है, रास बिहारी का मंदिर में। तो हमारे गुरु जी के बड़े अच्छे प्रेमी थे, वो हमारे पास ऑपरेशन करने के लिए आए थे, 40 दिन रुके, बड़ा ऑपरेशन हो गया उनका। तो वो सभी भक्तों को ना एक ही कहानी बताते थे, अक्रूर जी आए कृष्ण को ले गए, और वो भी नहीं, वो बताते बताते जाते कृष्ण को ले गए, फिर अक्रूर जी वहां पर कृष्ण को छोड़ दिए, फिर कृष्ण ने हाथी को मारा, फिर वो क्या मल्लों को मारा, कुश्ती वालों को मार दिया, चारण मुष्टिक को, फिर कंस को मारा, फिर उग्रसेन को रिहा कर दिया, माता पिता को रिहा कर दिया, यहाँ तक कथा बताते जा रहे हैं प्रेम से। और उस प्रसंग में आते हैं कि अभी देवकी वसुदेव को मिल रहे हैं और पाम छू रहे हैं और पूछते हैं, मैया बाबा मैंने आपकी सेवा नहीं किया, क्या सेवा करूं, इतने दिन तो दूर रहा मैं आपसे, बाल्यपन में आपके साथ नहीं रहा, अभी आपके क्या आज्ञा है। तो मैया बाबा क्या बोलते हैं, अभी यही रहो आप, तो वो हाँ कहते हैं। नंद बाबा वहां खड़े होकर सुन रहे हैं कि अभी लाला मेरे साथ में लौट कर नहीं आएगा, तो क्या। और ये बात कहते ही वो ऐसे फूट फूट कर रोते थे ना, आगे की कहानी बंद। तो मैंने मेरे महाराज जी को पूछा कि ये कहानी 10 बार उनको बताते हुए मैंने देखा, पर ये पॉइंट पे वो फूट फूट कर रोते आगे बताते नहीं, तो कारण क्या है। तो गुरुदेव हमारे उनको जानते थे, उन्होंने कहा नंदगांव वासियों के लिए ये निर्णय कृष्ण का कि अभी मैं यहीं रहूंगा, मतलब क्या हुआ उसके कंस में क्या लिखा है, लौट के नहीं जाऊंगा नंदगांव, ये सबसे बड़ी दुखद घटना है उनके लिए। तो ऐसा नंदगांव के लोगों का भाव है। नंद महाराज की भी कहानी है, देख सुनाऊं क्या, अभी टाइम है क्या आपके पास, ठीक है चलो। नंद बाबा ना खड़े होकर देख रहे हैं, वो भी गए थे ना देखने के लिए, कंस का वध उन्होंने भी देखा है ग्वाल बालों के साथ, ये भी दृश्य देख रहे हैं वो। अभी क्या बोलेंगे, सबका हृदय तो कृष्ण को जो पसंद है वही करने में है, कृष्ण को विरोध नहीं करना चाहते, कृष्ण का दिल यहाँ रहने का है तो ठीक है, मैया बोल रही है मैं गुरुकुल भेजूंगी आपको, ब्राह्मण संस्कार करूंगी, गुरुकुल भेजूंगी, बहुत सारा विधि करना बाकी है, मेरा कर्तव्य माता पिता के रूप में बाकी है। तो वो इतने दुखी हो गए जैसे पांव ही भारे हो गए उनके, आगे नहीं बढ़ रहे। तो फिर जाना पड़ा उनको वहां से, आशीर्वाद लिया मैया बाबा को, कहा मैं जल्दी लौट के आऊंगा, लेकिन ना वो आगे चल ही नहीं पा रहे थे, इतने दुखी थे कि मैं यशोदा को क्या बताऊंगा, कान्हा को लेकर गया था और लेकर आऊंगा, लेकिन अभी कान्हा साथ में नहीं है, बलराम भी साथ में नहीं है। तो वो बड़े भारी पांव से नंदगांव की ओर मथुरा से लौट के आ रहे हैं, बीच में ना आगे बढ़ ही नहीं पाए, रुक गए एक गांव पर, उसका नाम है गौरव उस गांव का नाम, क्योंकि उस गांव में नंद बाबा को राजा मानकर, राजा थे ना उनको, इतना उनका गौरव किया, सत्कार किया, उनका इतना पूजन किया, लेकिन नंद बाबा का दिल नहीं था उसके, नंद बाबा तो अपना हृदय की भावना में कश्मकश में बिजी थे, बाहर से पूजा हो रही है गौरव हो रहा है वो कुछ सुन नहीं रहे, उनको एक ही दुख में यशोदा को मुंह कैसे दिखाऊंगा। फिर यहाँ लौट के आते हैं, मैया बहुत खबर मिलती है कि बाबा आ रहे हैं, तो मैया बहुत क्या कहते हैं उत्सुक हो जाते हैं कि अभी कृष्ण बलराम आएंगे, कितने दिन के बाद में मक्खन खिलाऊंगी उनको, अपने हाथ से मंथन कर रही है, इतना एक्साइटेड है। पूछती है कहाँ है, तो कह रहे वो नहीं आए। अरे बस बस मजाक मत करो, अभी आप क्या मजाक कर रहे हो, मेरा फांसी मजाक कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, कहाँ है बताओ, अभी बहुत देर हो गई मैं अभी सहन नहीं कर पाती। फिर कहते हैं वो नहीं आए, फिर भी वो डांटते हैं उनको, ऐसा मजाक करने को आपको ऐसा अच्छा लगता है, मैं कितने दिन से इंतजार कर रही हूँ, फिर भी कहते हैं वो नहीं आए। फिर जो मैया फूट फूट कर रोती है और फिर फूट फूट कर रोती है, फिर रुकती है और कहती है कि तुम लौट के कैसे आए, उसके बिना तुम लौट के कैसे आए, दोनों के बिना। उन्हें बताया समझाया ऐसे ऐसे हुआ, कहते हैं कि आपको लौट के नहीं आना चाहिए था, उनके बिना उनको लेकर आना चाहिए था। फिर वो फिर समझाते हैं, लेकिन वो मैया का प्रेम ऐसा है कि वो मान नहीं रही है बाबा की बात को। फिर ऐसा डांटती उनको कि तुम कैसे पिता हो, तुमको तो प्रेम ही नहीं है, ऐसा ऐसा डांटने लगती। मतलब पहले पूछ रही है, इंक्वायरी कर रही है, फिर डांटना आरंभ करती है, फिर डांट उनके और तेज होने लगती है। एंड में मन में क्या बोलती है, एकदम घणाघात आघात करती है। वो कहती है कि अरे प्रेम तो करना तुम दशरथ से सीखो, वो देखो जब वन में चले गए ना, वो प्राण छोड़ दिए उन्होंने, प्राण छोड़ दिए, तुमने क्यों नहीं प्राण छोड़े वहां पर। ये मतलब तो अल्टीमेट था ना, ये एकदम ब्रह्मास्त्र है पूरा। ऐसा कहना और ऐसा सुनना कितनी बड़ी बात है। नंद बाबा भी इतने भी संयमी है, सब बातें सुन रहे हैं, अपनी पत्नी के प्रेम को पूरा जानते हैं, इसे सब कुछ सुन रहे हैं। लेकिन ये तो अल्टीमेट उनका वचन था कि दशरथ से प्रेम करना सीखो, उसने तो शरीर भी छोड़ दिया और तुम जीवित कैसे लौट के आए, वहीं क्यों नहीं मर गए तुम। और ऐसा कहकर वो खुद ही दुखी होकर बेहोश होकर गिर गई। फिर नंद बाबा उनको सवारा है, उनको होश में लाया है, और जब वो थोड़ी संभल गई, सिसकियां भर के रो आहट देकर रो रही थी। नंद बाबा ने जो कहा सब लोग ध्यान से सुनिए, कुछ सो रहे तो जग जाइए। नंद बाबा ने जब ये देखा कि योग्य प्रसंग है, अभी मैं बता सकता हूं। नंद बाबा ने कहा देखो यशोदा, मरना बहुत आसान था, मैं भी वही मर जाता, मैं भी वही शरीर छोड़ देता, लेकिन लाला ने कहा था कि मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, माता का कर्तव्य पूरा करके जरूर आऊंगा। अभी तुम सोचो कि मैं वहां मर गया होता और एक दिन लाला यहाँ लौट के आता और पूछता कि बाबा कहाँ है, तो उस पर क्या बीतती, उस पर कितना दुख होता। इसलिए यशोदा हम दोनों को जीना है और जीवित रहना है, एक दिन वो आएगा तब उसको सुख देने के लिए हमको जीवित रहना है, चाहे पहाड़ जैसे दुख टूट पड़े हमारे पर, लेकिन हमको जीवित रहना है। मरना तो बहुत आसान है, लेकिन इस स्थिति में जीना बहुत मुश्किल है, और वो मुश्किल काम तुम्हें और हमें दोनों को करना है। ये नंदगांव का प्रेम है, ये प्रेम को समझना चाहिए, ये हमारे बस में नहीं समझता ये कैसे प्रेम है। ये तो ये सब घटनाएं यहाँ पर हुई है, हाँ, ये सब प्रेममयी वात्सल्यमयी घटनाओं का ये सार संग्रह नंदगांव है। एक प्रकार से ना प्रेम से पागल जो लोग है ना, उनका समुदाय है पूरा, ऐसे भागवत में लिखा है। कृष्ण का सर्वत्र दृष्टि, सर्वत्र कृष्ण का दृष्टि, सब जगह उनको कृष्ण ही दिखते हैं। पनगट शाम शाम जमुना तटी, पाती पाती पे शाम, इत देखू उत शाम, सब जगह शाम ही शाम है उनके लिए। ऐसे शाम मय कृष्णमय जीवन है उनका। नंदगांव में जो भजन करता है और सिद्ध होता है उसको सबसे महान माना गया है, क्योंकि यहाँ पर इनके नटखट बालक रहते हैं, वो तपस्या वालों को तपस्या करने देते नहीं है, और उनके बीच में तपस्या करके सिद्ध होता है वो सबसे बड़ा महात्मा माना गया है। बोलो सही है कि नहीं बात। बोलो नंद बाबा की, नंदगांव धाम की जय, जय श्री राधे श्याम।